हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 4, 5 एंड 6। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांगये। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम् अत्यैव मे विशतो मानसराजहंस, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्ते, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ता। आराध्यो भगवान् ब्रजीशतनाय, तत्थाम वृंदावनम् रम्यां काचिदुपासना व्रजवधु, वर्गीनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थोमः श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापरवंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांभर दरुणबिंदफल धरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि, यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवेस्तवे, वेदे सांगपद क्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। ఉత్తమం దైవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జాయామురీరయేత్ నష్టప్రాయీషు అభద్రీషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీయుత్తమ శ్లోకే భక్తిరభవతి నైష్టికీ పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం భక్తరూప స్వరూపకం భక్తావతార భక్తాఖ్యం నమామి భక్తశక్తికం జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార శ్రీవాసది గౌర భక్తవింద హరి కృష్ణ 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 హరి 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 రామ హరి రామ 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 హరి హరి గ్రంథరా శ్రీమద్భాగవత మహాపురాణకి జయ. ప్రథమ స్కంద అధ్యాయ 18 జిస్కా శీర్షక్ హై బ్రహ్మణ బాలక్ ద్వారా మహారాజ్ పరీక్షిత్ కు శాప్. శ్లోక సంఖ్య 4. ఇన్ అత్యంత హీ పవిత్ర శబ్దో కో మేరే సాథ్ సాథ్ ఉచ్చారణ కర్నే కా ప్రయాస్ కీజియే. సూత్ గోస్వామి బతా రహే హై నోత్తమ శ్లోక వార్ధానాం జుషతాం తత్ కథామృతం స్యాత్ సంభ్రమంత కాలేపి స్మరతాం తత్ పదాంభుజం. నోత్తమ శ్లోక వార్తానాం జుషతాం తత్ కథామృతం స్యాత్ సంభ్రమంత కాలేపి స్మరతాం తత్ పదాంభుజం. నోత్తమ శ్లోక వార్తానాం జుషతాం తత్ కథామృతం స్యాత్ సంభ్రమంత కాలేపి స్మరతాం తత్ పదాంభుజం. అత్యంత హీ సుందర్ ఔర్ అత్యంత హీ మహత్వపూర్ణ బాత్ యహాన్ పర్ సూత్ గోస్వామి బతా రహే హై. నోత్తమ శ్లోక వార్తానాం, నో మతలబ్ కభీ నహీ. ఉత్తమ శ్లోక్ భగవాన్ కా నామ హై. భగవాన్ కో ఉత్తమ శ్లోక్ క్యూ కహతే హై? క్యూంకి ఉన్కా గాన్ వైదిక స్తోత్రో సే కియా జాతా హై. భగవాన్ కీ స్తుతి జో కీ జాతీ హై ఉన్కో ఉత్తమ శ్లోకో సే స్తుతి కీ జాతీ హై. లేకిన్ ఆజ్ కల్ లోగ్ ఫిల్మో కే గానే గాతే హై ఔర్ ఫిర్ ఇస్ తరహ సే బోల్తే హై కి ఇన్ గానో కే ద్వారా హమ్ భగవాన్ కీ స్తుతి నహీ. భగవాన్ కి ఉస్తుతి ఉన్ చునే హుయే శబ్దోం కే ద్వారా, ఉన్ వైదిక మంత్రోం కే ద్వారా, ఉన్ స్తోత్రోం కే ద్వారా జో శుద్ధ వైష్ణవ హై ఉన్కీ వాణీ కే జో శబ్ద హోతే హై ఉన్కే ద్వారా భగవాన్ కి స్తుతి కీ జాతీ హై. ఇస్లియే భగవాన్ కో కహతే హై ఉత్తమ శ్లోక వార్తానాం. యానీ కి ఉన్ పర్ వార్తానాం కా మత్లబ్ హై కి వో భక్త భగవాన్ కే వో శుద్ధ భక్త జో సదైవ ఉన్కీ కథాఓ మే హీ రమే రహతే హై. ఉన్కా జీవన్ హీ కథా హై. యది ఉన్కో ఖానా బినా నహీ మిలేగా తో వో జీవిత రహ సక్తే హై, పరంతు వో భగవాన్ కీ కథాఓ కే బగైర్ నహీ. భగవాన్ కీ కథా శ్రవణ కర్నా హీ ఉన్కా జీవన్ నిర్భర్ రఖనే కా ఏక్ మాత్ర ఉపాయ హై. తో ఏసే జుషతాం తత్ కథామృతం, జో సదైవ ఉన్కీ కథామృత కో చఖనే మే లగే రహతే హై, కంటిన్యూస్ భగవాన్ కీ ఉన్ భగవాన్ కీ జిన్కీ స్తుతి ఉత్తమ శ్లోకో కే ద్వారా కీ జాతీ హై, ఉన్కీ కథాఓ కో హీ శ్రవణ కర్తే రహతే హై. యహాన్ పర్ శ్రవణ కీ మహిమా బతా రహే హై కీ యది హమ్ సదైవ భగవాన్ కీ కథాఓ కో శ్రవణ కర్నే మే లగే రహేంగే తో ఉస్సే క్యా లాభ హోగా. స్యాత్ సంభ్రమంత కాలేపి, స్యాత్ సంభ్రమంత కాలేపి, ఫిర్ వో అంత సమయ మే కభీ భీ భ్రమిత నహీ హోగా. అంత సమయ మే వో కభీ భీ అప్నే పథ సే విచలిత నహీ హోగా. అంతిమ క్షణ మే కిసీ ప్రకార కీ భ్రాంతి నహీ హోగీ. अगर हम चाहते हैं कि हमारा अंत समय जो है वो सार्थक हो जाए, क्योंकि जीवन की परम सिद्धि यही है। भगवान बताते भगवत गीता 8.5 में, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तम तम यह प्रयाति समद भावम यान्ति नास्त्यत्र संशय। अर्जुन, इसमें बिल्कुल भी संशय मत रखना कि यदि अंत समय में मैं तुम्हें याद आ गया ना तो फिर तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। और अंत समय में भगवान किस प्रकार से याद आएंगे वो भगवान यहाँ पर विधि बता रहे हैं कि जुषताम तत्कम कथामृतम। अगर आप चाहते हो कि हमारी सदगति हो, अगर आप चाहते हो कि हम जन्म मरण के चक्कर से बचें, अगर आप चाहते हो कि हम कृष्ण के धाम को प्राप्त करें, अगर आप चाहते हो कि हम कृष्ण को प्राप्त करें, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करें, हम इस भौतिक जगत में बारंबार दुखों से भरे हुए इस जीवन से बच जाएं, तो उसका एक ही तरीका है कृष्ण को प्राप्त करना। और कृष्ण के प्राप्त करने का एक ही तरीका है अंत समय में भगवान को याद करना। और अंत समय में भगवान को याद करने का तरीका है जुषताम तत्कथामृतम। भगवान की कथाओं को सदा अपनी जीवन, जिस तरह सांस लेना कितना जरूरी होता है, ऑक्सीजन के बगैर जीना कितना मुश्किल है ना, ऑक्सीजन नहीं मिले तो कैसे हम तड़प तड़प के मर जाएंगे, उसी तरह से हमको कथा को अपना जीवन बनाना चाहिए। नोत्तम श्लोक वार्ता नाम, वार्ता नाम मतलब वही कथा जिसका जीवन बन जाती है। कथा न मिले तो तड़प होनी चाहिए, कथा न मिले तो व्याकुल हो जाना चाहिए कि आज मुझे कथा श्रवण करने को नहीं मिली। भगवान के शब्द श्रीमद् भगवत गीता भागवतम महापुराण के इन शब्दों को श्रवण करने का अवसर नहीं मिला, तो उसी तरह से व्याकुल हो जाना चाहिए जिस तरह से यदि ऑक्सीजन प्राप्त न हो तो कैसे व्याकुल हो जाता है व्यक्ति। और अगर ऐसा कथा ही हमारा जीवन बन जाएगा तो क्या स्यात संभ्रमोंत काले पे, फिर अंत समय में कोई भ्रांति नहीं होगी। क्यों भ्रांति नहीं होगी? स्मरताम तत् पदाम भुजम, क्योंकि स्मरण में उनके चरण कमलों की छाप बनी रहेगी। अब अंत समय में क्या होता है कि हमारी जो स्मरण शक्ति है ना वो बहुत क्षीण हो जाती है, तो हम बहुत सारी चीजों को नहीं याद कर सकते। जिसको कंटिन्यू हमने याद किया है ना, बस जिससे बहुत ज्यादा प्रेम किया है, जिसके विषय में बहुत ज्यादा सुना है, जिसके विषय में बहुत ज्यादा स्मरण किया है, तो उसी के विषय में हम लोग सोच सकते हैं। बहुत सारी चीजों को भले हम थोड़ा थोड़ा, कभी ऐसा होता है भगवान के विषय में भी सुन लेते हैं, लेकिन ज्यादा अगर मोह हमारा भौतिक जगत में होगा ना तो फिर अंत समय में हर चीज वो याद नहीं आएगा। कि अंत कुछ लोगों का ये होता है ना कि अब भगवान का नाम तो यदि हम अंत समय में लेंगे तो भी हम पार हो जाएंगे, तर जाएंगे, तो फिर अभी तो हम जीवन का मजा ले लें। लेकिन जो जीवन का मजा लेते जाएंगे ना, तो उसको अंत समय में भी ये मजा सजा के स्वरूप में दिखाई देगा ना? कि आज मैं वो आनंद नहीं ले सक रहा हूँ, लेकिन भगवान नाम के विषय में उसको इच्छा नहीं होगी। लेकिन यदि हम सदैव भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहेंगे तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे हम श्रवण करते जाते हैं तो क्या होता है, हृदय के अंदर भगवान के चरण कमल आकर स्थापित हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुद्य ते तकृति भी शुश्रूषुभिस तत्क्षणात्, उसी समय भगवान जो है वो हमारे हृदय में आकर कैद हो जाता है। और जब अंत समय में हमें भगवान को स्मरण करने की आवश्यकता होती है ना, तब हम लोगों को कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती है, वो स्वतः याद आ जाते हैं। क्योंकि जिससे प्रेम होगा, जिसको हृदय में बिठाया होगा, उसको याद करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हम तो चाहे जो भी कर रहे हो, इवन जब तकलीफ होती है, दुख होती है, कोई बहुत बहुत ज्यादा भयानक कष्ट आने वाला होता है, तो कैसे हमें अपने प्रिय लोग याद आते हैं। उसी तरह से यदि प्रेम कृष्ण के साथ करेंगे, संबंध कृष्ण के साथ बनाएंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण करके इस बात को अनुभव करेंगे कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई और मुझे इस कष्ट से छुटकारा नहीं दिला सकता है, तो उस उत्तम श्लोक भगवान की वार्ता ही जिसका जीवन है और उनकी कथा के अमृत को चखने में जो सदा लगे रहते हैं, स्यात् संभ्रमोंत काले, उसको अंत समय में कोई भ्रम नहीं होता, क्योंकि स्मराताम तत्पदाम भुजम, वो भगवान के चरण कमलों को स्मरण करता है। यहाँ पर एक बात मैं आपको वापस से याद करा दूं कि बताया जा रहा है तत् पदाम्बुजा। पदाम्बुजा मतलब भगवान के चरण। चरण का मतलब होता है भगवान के साकार स्वरूप की बात हो रही है। वो निराकार स्वरूप की बात नहीं कर रहे हैं जिसका नाम, जिसके ना चरण है, ना हाथ है, ना मुंह है, ना कुछ है। निराकार वादियों की बात नहीं की जा रही है। अंत समय में यदि सरलता से भगवान को याद करना है तो भगवान के साकार स्वरूप को यदि हम याद करेंगे, यहाँ सूत गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि आप उस भगवान को जिनकी स्तुति उत्तम श्लोक कौन से की जाती है उनको याद रखो, यानी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को, उनके चरण कमलों में आपकी प्रीति बनी रहेगी तो अंत समय में भी वो स्मरण बना रहेगा। और अगर अंत समय में उसे याद कर लिया तो फिर आपका जन्म सफल हो जाएगा। अनुवाद देखिए, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने वैदिक स्तोत्रों से स्तुति किए जाने वाले भगवान की दिव्य कथाओं के लिए ही अपना जीवन अर्पित कर रखा है। और जो निरंतर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति नहीं हो पाती। यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज का जीवन सफल कैसे हुआ। जैसे हम लोगों ने कल पहले पढ़ा, शुरू में बताया कि श्री सूत गोस्वामी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अद्भुत कार्य करने वाले हैं और उनकी कृपा से द्रोण पुत्र के अस्त्र द्वारा अपनी माता के गर्भ में ही प्रहार किए जाने पर भी महाराज परीक्षित जल नहीं पाए। क्योंकि महाराज परीक्षित की सुरक्षा भगवान ने की थी तो माता के गर्भ में वो सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त महाराज परीक्षित स्वेच्छा से सदैव भगवान के शरणागत रहते थे, अतएव वे उड़ने वाले सर्प के भय से, जो उन्हें ब्राह्मण बालक के कोप भाजन बनने के कारण काटने वाला था, ना तो भयभीत थे और ना ही सम्मोहित। क्यों भयभीत नहीं थे? उनको पता था 7 दिन के बाद तक्षक सर्प आकर मुझे काट देगा, लेकिन क्योंकि भगवान के संरक्षण में थे, उन्हें पता था कि कृष्ण यदि चाहे तो मुझे कोई नहीं मार सकता और यदि ये कृष्ण की इच्छा है तो इसी में मेरा कल्याण है। तो वो भयभीत नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उत्सृज्य सर्वतः संगम, अपने सारे जो संघ हैं जिनके लिए हम जी रहे हैं उन सबको छोड़ दिया। राज, ये पृथ्वी लोक उसका राज्य था, इसमें न जाने कितना उनका वैभव था, ऐश्वर्य था, धन था, धान्य, सब कुछ छोड़ दिया। विज्ञाता जित संघ था सब, और फिर अजित भगवान जो किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते, इस भगवान की स्थिति को समझ दिया। और कैसे समझा, वैया सकीर जहो शिष्यो, क्योंकि व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी के शिष्य गंगायाम स्वम कलेवरम, और वहां पर गंगा के तट पर आसानी से बगैर किसी मोह के अपना शरीर भी त्याग दिया। और वो क्यों की कर पाए, वो ऐसा उनके अंदर त्याग कैसे आया, उनके अंदर ऐसा वैराग्य कैसे आया, वो बता रहे हैं, क्योंकि नौतम श्लोक वार्ता नाम दुष्यताम तत्कथामृतम, वो सदैव भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे थे। कब से ये जो महाराज परीक्षित है ना, वो श्रवण भक्ति के मुख्य उपासक हैं। जैसे हमारे नवदा भक्ति आती है ना, उसमें क्या है, प्रथम क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जो श्रवण भक्ति जो है उनके मुख्य उपासक हैं महाराज परीक्षित। क्योंकि उन्होंने बगैर किसी व्यवधान के, बगैर किसी डिस्टर्बेंस के कंटिन्यूस भगवान की कथाओं को श्रवण किया। वो बगैर कुछ खाए पिए 7 दिन और 7 रातों तक लगातार भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे थे। और जब महाराज परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी पूछते थे कि अब आप थक गए होंगे, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, अब आपको भूख लगी होगी, कुछ फल खा लीजिए, तब वो पता है क्या कहते थे, वो कहते थे कि ये कथा में इतना आनंद है, क्योंकि वो कथा ही उनका जीवन बन गई थी, कथा के द्वारा वो जी रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था, अगर मैंने कथा सुनना छोड़ दिया और सो गया, या फिर उस टाइम पर कथा को छोड़कर मैं कुछ खाने पीने के लिए चला गया तो उस समय मेरा जीना संभव नहीं होगा। कथा ही मेरा जीवन है ये सोचकर वो जी रहे थे, और इसलिए उन्होंने सारा सारी जो आसक्ति है ना वो समाप्त हो गई। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर हम लोग को भगवान की प्राप्ति करनी है तो फिर हमें वैराग्य करना पड़ेगा, संसार के हृदय के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह है उसको मारना पड़ेगा, और है ना भौतिक वस्तुओं से डिटेचमेंट करनी होगी। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, शास्त्र बता रहा है सब कुछ हो जाएगा। क्या करना? वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत याशु वैराग्यम ज्ञानम च तदहैतुकम्। आपको ज्ञान भी प्राप्त होगा और वैराग्य भी प्राप्त होगा। सिर्फ क्या करना है? भगवान की कथाओं को श्रवण। जब हम कथा श्रवण करते जाएंगे तो ज्ञान तो प्राप्त हो ही जाएगा। ज्ञान क्या है? तुम आत्मा हो, तुम्हारा संबंध केवल कृष्ण के साथ है। जब हम भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो हमें हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हमारा अस्तित्व क्या है वो पता चलेगा। और जैसे हमें अपने अस्तित्व के बारे में पता चल गया कि मेरा तो कृष्ण के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, तो फिर भौतिक वस्तुओं से वैराग्य स्वतः हो जाएगा। आपको करने की जरूरत नहीं है। भक्ति महारानी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य स्वतः आ जाते हैं। उनको लाने के लिए कोई अलग से चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। और भक्ति कैसे की जाती है? भक्ति का प्रथम चरण है श्रवण। तो यहाँ पर श्रवण करते करते महाराजा परीक्षित के अंदर वैराग्य आ गया। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आकर अपना प्राण त्यागा, और अंत समय उनको कोई भ्रांति नहीं हुई। स्यात् सम भ्रमोन्त कालेपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम्, क्योंकि उनका चित्त जो है वो भगवान के चरण कमलों में लग चुका था। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जीवन के अंतिम क्षण में भगवान की दिव्य प्रकृति को स्मरण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने का समय जो है वो अंतिम समय है, यानी ये एक एग्जाम होता है। ये जीवन जो है वो पूरा समझो उसका एक एग्जाम होता है अंत समय पर। यदि उस समय हमें भगवान का स्मरण हो आया तो समझो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और भगवान के अतिरिक्त कुछ भी याद आ गया, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कितनी ही महान वस्तु हो या कितनी ही निकृष्ट वस्तु हो, अगर अंत समय में उसको याद कर लिया ना तो फिर जीवन का सत्यानाश हो गया, सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। भले कुछ भी याद आ गया तो फिर क्या करना है? अंत समय में केवल भगवान के चरण कमलों को याद करना है, उसी से सिद्धि प्राप्त होगी। यह जीवन की सिद्धि उससे ही मिल पाती है जिसने सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त आत्मा द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्तोत्रों से या परम्परा के किसी व्यक्ति से भगवान की वास्तविक दिव्य प्रकृति के विषय में सीखा है। अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि यदि आपको जीवन की सिद्धि प्राप्त करनी है तो किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के साथ जो खुद भगवान के साथ कोई संबंध नहीं रखता, जो भगवान का भक्त नहीं है, भले वो कितना ही तुमको शास्त्रों का ज्ञान दे दे, भले ही सारा कंठस्थ हुआ भागवत या भगवत गीता तुमको सिखा दे, लेकिन अगर वो प्रामाणिक नहीं है, वो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, तो वो आपको भगवान के प्रति प्रेम प्रदान नहीं कर सकता। देखो, आपको जो चीज चाहिए वो उसी से लेनी होगी जिसके पास है। अभी जिसके पास वो वस्तु नहीं है उससे यदि आप उस वस्तु की मांग करोगे तो भला वो कहाँ से दे सकेगा। इसलिए यदि हमें भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना है तो सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त आत्माओं द्वारा गाए जाने वाले वैदिक स्तोत्रों से, वैदिक जो श्लोक हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने बताए हैं उनके द्वारा बताए गए इन श्लोकों के द्वारा, फिर अगर वो हमें बताते हैं कोई भी मतलब उनके शब्दों को एज इट इज बताता है तो फिर हम उन्हीं के शब्द पढ़ लें ना। ये जो श्लोक्स हैं ना जो हम पढ़ते हैं, जो भागवतम के श्लोक्स होते हैं, भगवत गीता के श्लोक्स होते हैं, वो इतने पवित्र हैं कि हमारे जीवन को पवित्र कर देते हैं। तो हमें कुछ लोग होते हैं बोले वो फिल्मों के गाने सुनकर भी यदि हमें भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है तो फिर ओके आप गाने सुन लो, आप शेर सुन लो, आप ये सुन लो, नहीं, हम इन सब की बराबरी जो है वो इन उत्तम श्लोकों से नहीं कर सकते। ये शब्द भले हमें समझ में ना आए, भले हमें उच्चारण करने ना आए, लेकिन यही शब्दों के द्वारा हमारा कल्याण होने वाला है। भौतिक चाहे जो लोगों ने लिखे हैं, भले ही वो उनका लिखने के टाइम पर या जो भौतिक गाने हैं, भौतिक जो वस्तु हैं, जो भले भजन भी हैं, लिखने के टाइम पर उनका माइंड क्या था कि ये हम लिखेंगे हम फेमस हो जाएंगे। तो जब उसने लिखा या गाया उस टाइम पर उसको या धन की या फिर फेम की अगर इच्छा से उसने लिखा है या गाया है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो थे उससे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए वही वस्तु को चुनना होगा, वही व्यक्ति के शब्दों को चुनना होगा जिसके पास कृष्ण प्रेम है। और आगे कहते हैं, वैदिक स्तोत्रों के को किसी ज्ञानी से सुनने से कोई लाभ नहीं है। साफ बताया, भक्त के द्वारा सुनना है, ज्ञानी के द्वारा नहीं सुनना है। जो ज्ञानी सिर्फ ज्ञान की खोज कर रहा है और भले कितना सीख कर आ गया, लेकिन उससे यदि आपने सुन लिया तो आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। अंत में आपको वही याद आएगा जिससे आप प्रेम करोगे, और प्रेम आप तभी कर सकोगे जब आप किसी प्रेमी से उसके विषय में सुनोगे। तो किंतु जब उन्हें किसी वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुना जाता है और सेवा तथा विनय द्वारा ठीक से समझा जाता है, तो हर बात स्पष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था 3.34 में, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्व दर्शनम। अगर तुम वास्तव में जानना चाहते हो, तत्व को सीखना चाहते हो, तो किसी तत्वदृशी के पास जाओ, उसकी सेवा करो और उससे प्रश्न पूछो। वो तत्वदृशी जो गुरु है, जिस जो परंपरा से आया हुआ है, वही तुम्हें वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकता है। और यही बात यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि किंतु जब उन्हें किसी वास्तविक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुना जाता है और सेवा तथा विनय द्वारा ठीक से समझा जाता है, तो हर बात स्पष्ट हो जाती है। इस तरह विनीत शिष्य दिव्य स्तर पर जीवित जीवन के अंत तक रह सकता है। विनीत शिष्य रह सकता है, ज्ञानी नहीं रह सकता है। जो अपने ज्ञान के बल पर आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए भगवान ने बोला भगवत गीता में, क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसा। जो मेरे मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरे स्वरूप को अपने हृदय में नहीं बिठाता, उसके लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन है। परंतु जो मुझसे प्रेम करता है, मय्यावेश्यम अपने मन को मुझ में आविष्ट कर देता है, तस्याहम सुलभ पार्थ अनन्य चेता सततम योमा स्मरति निश्चिता। भगवान बता दे 8.14 में, अनन्य चित से जो मुझे स्मरण करता है उसके लिए कोई कठिनाई नहीं। अर्जुन तस्याम सुलभ पार्थ, मैं उसे बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। तो इस तरह विनीत शिष्य दिव्य स्तर पर जीवन के अंत तक रह सकता है। वैज्ञानिक अनुकूलन द्वारा मनुष्य भगवान को जीवन के अंत समय तक स्मरण रख सकता है। जब शरीर के जर्जर होने से स्मरण शक्ति ढीली पड़ जाती है, सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन के अंत समय वस्तुओं को यथारूप में स्मरण रख पाना कठिन है, लेकिन भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों या गुरुओं की कृपा से मनुष्य को यह अवसर सहज ही प्राप्त हो जाता है। महाराज परीक्षित के साथ ऐसा ही हुआ। यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी हमारे अंत समय की स्थिति के विषय में बता रहे हैं कि क्योंकि उस समय इतना कष्ट होता है कि हमारा शरीर भी बहुत जर्जर हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, बूढ़ा हो जाता है और उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, जिसके कारण हमारी स्मरण शक्ति भी ढीली पड़ जाती है। तो फिर सामान्य व्यक्ति जो होता है वो अंत समय में सारी वस्तुओं को यथारूप में याद नहीं कर सकता, लेकिन याद कौन कर सकता है? जो भगवान तथा उनके प्रामाणिक भक्तों या गुरुओं की कृपा से मनुष्य को वो अवसर प्राप्त होता है जिससे वो याद कर सके। इसीलिए संबंध बनाना चाहिए भगवान के शुद्ध भक्तों के साथ। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, प्रामाणिक गुरु होते हैं, उनके साथ अपना संबंध बनाना चाहिए, ताकि अंत समय में वो उनकी कृपा से हम भगवान को याद कर सकें। इसे महाराजा परीक्षित के साथ भी ऐसा ही हुआ कि अंत समय में उनकी भेंट जो है वो सुखदेव गोस्वामी के साथ हुई। इसलिए कहा जाता है, अगर आप किसी के शुभ चिंतक हो, अगर आप किसी के वेल विशर हो, तो क्या करो, अगर जैसे अभी अंत समय आने वाला हो ना, तो उस समय जाकर उसके साथ बैठो और कुछ भी बोलने मत दो उसको, कुछ भी जो घर वाले भी हैं उनको भी मत बोलने दो, ना उनके रिश्तेदारों के बारे में, ना उनके संबंधियों के बारे में, ना उनके कारोबार के बारे में, कुछ भी नहीं। बस केवल भगवान के नाम को, भगवान की लीलाओं को उनको सुनाते जाओ, सुनाते जाओ। किसी तरह से भगवान के चित्र को दिखाओ, भगवान की विग्रह की तरफ उनका ध्यान एकत्रित करने की कोशिश करो। नाम को इतना जोर से उनके सामने गाओ कि वो मजबूरन वो नाम जो है वो उसको कान में सुनाई दे। और अगर वो उसी नाम, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अगर उस समय उसको भगवान का नाम उसके मुख से निकल जाए, उसके कान में सुनाई भी दे, तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए हमें सिंसियर होना चाहिए सबके साथ। और अंत समय में लोगों को नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए पूरा जीवन यह कोशिश करनी चाहिए जिससे भी मिले ना उसको अवश्य भगवान के नाम के प्रति, उससे हरे कृष्ण तो कहलवाना ही चाहिए। जब भी मिले उसको बोले हरे कृष्ण, तो इस तरह से आपको देखकर उसे ये छाप हो जाती है। ऐसा होता है ना, कुछ कुछ लोगों को देखकर खुद ब खुद कुछ शब्द मुंह से निकलने लगते हैं। तो आपको देखकर अगर किसी के मुख से कृष्ण का नाम निकलता है, समझो आपने उसका कल्याण कर दिया। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, तावत काले न प्रभवेत प्रविष्टोपि सर्वतः यावदीशो महान उर्व्याम आभिमन्यव एकरात तावत् कलि न प्रभवेत प्रविष्टोपि सर्वतः यावदीशो महान उर्व्याम आभिमन्यव एकरात तावत् कलि न प्रभवेत् प्रविष्टोपि सर्वतः यावदीशो महान् उर्व्याम् आभिमन्यव एकरात् तावत् कलि न प्रभवेत्। तावत् मतलब उस समय तक, तब तक कली न प्रभावित, यानी कली कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ सकेगा, कलयुग तब तक बढ़ नहीं सकेगा जब प्रविष्टो पीह सर्वता प्रवेश नहीं कर पाएगा सर्वता इस संसार में। इस संसार में कलयुग का प्रभाव तब तक नहीं आएगा। यावदीशो महान उर्व्याम, यावत यानी जब तक, ईश मतलब प्रभु यानी जब तक स्वामी कैसे होंगे, जब तक राजा या नेता कैसे होंगे, महान उर्व्याम बहुत शक्तिशाली होंगे, किसके जैसे, आभिमन्यव अभिमन्यु का पुत्र यानी परीक्षित महाराज जैसा, एकराट यानी जब परीक्षित महाराज जैसे कोई सम्राट होते हैं जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, वो कभी भी अपने राज्य में कलयुग के प्रभाव को जमने नहीं देंगे। और जब तक ऐसे शक्तिशाली राजा होंगे जो कलयुग को अपने राष्ट्र में आने नहीं देंगे, तब तक जो सारी प्रजा है तब तक वो शांत और सुख का आनंद ले सकेगी। और यहाँ पर हमने देखा कि महाराज परीक्षित ने कलयुग को आने नहीं दिया, कलयुग को मारा नहीं, लेकिन कलयुग को अपने राज्य में आने नहीं दिया, भले उसको चार स्थान दे दिए, कौन से, द्योतम पानम स्त्रीय सोना, जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर शराब पिया जाता है, जहां पर परिस्त्री संग किया जाता है, जहां पर मांसाहार किया जाता है, तुम वहां रह सकते हो, लेकिन साथ ही साथ अपने राज्य से इन समस्त वस्तुओं को बिल्कुल निकाल के फेंक दिया, अपनी प्रजा को ये सारे अपराध करने की अनुमति नहीं दी, कोई ऐसा उनकी प्रजा में गुंजाइश नहीं थी ऐसी कि ये अपराध किया जा सके, मतलब कलयुग को बिल्कुल निष्कृष कर दिया गया। तो यदि आज हम चाहते हैं कि कलयुग का प्रभाव हम पर ना पड़े, तो हमें आज भी यही काम करने पड़ेंगे कि हमें ये सारी चीजों से बचना पड़ेगा, मांसाहार से, स्त्री परिस्त्री संग से, जुआ से, शराब से। यदि हम बच जाएंगे तो कलयुग कभी भी हम पर हावी नहीं होगा। अपना प्रभाव तावत कली न प्रभवे, तब तक कलयुग जो है अपना प्रभाव नहीं जमा सकेगा। अनुवाद देखिए, जब तक अभिमन्यु का महान शक्तिशाली पुत्र संसार के सम्राट बना हुआ है, तब तक कली के बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि कली ने इस पृथ्वी में बहुत पहले प्रवेश कर लिया था और वह सारे संसार में अपना प्रभाव फैलाने की ताक में था। भगवान के जाते ही कलयुग आ गए थे, लेकिन वो भले ही कलयुग जो है वो ताक में था कि मैं कैसे इस पृथ्वी पर अपना प्रभाव जमाऊं, किंतु महाराज परीक्षित की उपस्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहे थे। यही अच्छी सरकार का ढंग है। सरकार यानी जो नेता होता है, जो राजा होता है, उनको अपने राज्य में कलयुग जैसे प्रभाव को बढ़ने के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए। यानी इतना अच्छे तरीके से अपने राज्य को सुव्यवस्थित करना चाहिए कि अपराध ना हो, क्योंकि अपराध जहाँ होते हैं कलयुग तो वहीं पर वास करता है। आगे श्री प्रभुपाद जी बहुत खास बता रहे हैं बात। वे कह रहे हैं, कली जैसे उपद्रवी तत्व सदा अपने निंद्य कृतियों को विस्तीर्ण करना चाहेंगे, लेकिन समर्थ राज्य का कर्तव्य है कि उन्हें सभी प्रकार से रोके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि महाराज परीक्षित ने बोल दिया तो अब कलयुग नहीं आएगा, लेकिन कलयुग आ गया है। लेकिन यदि वास्तव में उसको रोकना चाहते हैं तो राजा हैं, उनका क्या कर्तव्य है कि भले ही कलयुग फैलना चाहता है, अपने निंद्य कृतियों को विस्तीर्ण करना चाहता है, लेकिन समर्थ राज्य का कर्तव्य है कि उन्हें सभी प्रकार से रोके। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली के लिए कुछ स्थान नियत किए कर दिए थे, किंतु उसी के साथ साथ उन्हें प्रजा को इसका अवसर नहीं दिया था कि वे कली के प्रभाव में बह सकें। अगर वास्तव में आज हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, आनंद बना रहे, कलयुग का प्रभाव जीवों पर ना हो, तो गवर्नमेंट को ये सब बंद करना पड़ेगा। ये जो शराब खाने हैं, या जहाँ पर कसाई घर खोले हुए हैं, जहाँ पर पशु वध हो रहा है, वेश्यालय खोले हुए हैं, जहाँ पर परिस्त्री गमन हो रहा है, ये सब चीजें जब खत्म कर दी जाएंगी ना, तब कलयुग हम पर प्रभाव नहीं जमा सकेगा। लेकिन हमको ये नहीं देखना चाहिए कि अब इस कलयुग में ये सब रोकना बहुत ज्यादा कठिन है। हमें खुद से, अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। जहाँ पर हम रहते हैं, एटलीस्ट वहां पर तो कलयुग का प्रभाव ना हो, वहां पर तो मांसाहार ना हो, वहां पर तो द्यूत कीड़ा ना हो, वहां पर तो मांसाहार ना हो, वहां पर तो शराब ना पिया जाए, वहां पर तो अवैध संग ना हो। अपने घर से, अपने आप से शुरू करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम तो कलयुग के प्रभाव से बचे रहें। और हम इसमें किस तरह से समर्थ हो सकते हैं, कैसे अपने जीवन से कलयुग को भगा सकते हैं, उसका बहुत ही सुंदर उत्तर देते हैं आगे सुत गोस्वामी जी। कहते हैं, यस्मिन् हनि हर्येव भगवान् उत्ससर्जगाम् तदैवेहानुवर्तो सा अधर्म प्रभव करी। यस्मिन् हनि हर्येव भगवान् उत्ससर्जगाम् तदैवेहानुवर्तो सा अधर्म प्रभव करी। यस्मिन् हनि हर्येव भगवान् उत्ससर्जगाम् तदैवेहानुवर्तो सा अधर्म प्रभव कली। मतलब यस्मिन् न हनि, यस्मिन् मतलब जिस दिन, हनि इसको अहनी कहते हैं दिन को, और यर ही एव का मतलब होता है क्षण। जिस दिन और जिस क्षण से भगवान उत्ससर्जगाम, भगवान श्री कृष्ण ने उत्ससर्ज का मतलब होता है त्याग दिया, किसको, पृथ्वी को। भगवान श्री कृष्ण जब तक इस पृथ्वी पर थे तब तक तो कलयुग की कोई हिम्मत नहीं हुई, कलयुग तब तक ये साहस नहीं कर सका कि इस पृथ्वी पर वो अपना आक्रमण कर सके। परंतु जिस क्षण और जिस समय से भगवान इस पृथ्वी को त्याग गए, यस्मिन् नहनि हरिव, उस दिन से उसी क्षण से जब भगवान उस सर्जगाम भगवान ने इस पृथ्वी को त्यागा, उसी समय क्या हुआ, तदैवेहान वर्तोस तदो तदैवेहान, उसी समय एव मना बिल्कुल पक्की रीत से बिल्कुल निश्चित रूप से उसी समय वो अनुवर्तोस मतलब उसी समय आ गया, वो पीछे पीछे आ गया। जैसे ही भगवान गया इधर से कलयुग इधर से आ गया और फिर क्या किया, अधर्मा प्रभवा कली, और वो अधार्मिक कृत्यों को परिश्रय दे रहा था, अधर्म बढ़ा रहा था क्योंकि अब कलयुग आ गया था। भगवान जब तक थे तो धर्म की रक्षा हो रही थी और जैसे ही कलयुग आ गया तो फिर वो अधर्म को प्रभावित करने लगा, अधर्म को श्रेय देने लगा। इसलिए जैसे ही जीवन से, अब देखो हम लोग ये सोच सकते हैं कि अब भगवान तो है नहीं पृथ्वी पर, फिर तो जाहिर सी बात है कलयुग तो वैसे ही ताक में था, कृष्ण चले जाएंगे तो मैं अपना प्रभाव बढ़ाऊंगा, और आज तो भगवान नहीं है तो जाहिर सी बात है कलयुग जो है वो अपना उसका यहाँ पर हर जगह पर बोलबाला है। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान की कथा में कोई भी अंतर नहीं है। यदि आज भी हमारे जीवन में भगवान की कथाओं के श्रवण बना रहे, यदि आज भी हम भगवान के नाम से जुड़े रहे, तो आज भी कलयुग की कोई मजाल नहीं है कि हमारे जीवन में आकर हम पर आक्रमण करके अपना प्रभाव जता सके। आज भी यदि हम कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, भगवान को अपने जीवन से नहीं निकालना, क्योंकि साफ बताया यस्मिन् नहनि हरिव, भगवान उत्स सर्जगा, भगवान जब उत्स सर्ज हो गए, भगवान जब चले गए, तभी कलयुग को यहाँ पर प्रभाव जमाने की का अवसर मिला। तो फिर हमें अगर कलयुग से बचना है तो क्या करना है, भगवान को अपने जीवन से कभी नहीं जाने देना है। और वो कैसे, भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहेंगे, भगवान के नाम को जपते रहेंगे तो भगवान, और साथ में भगवान की विग्रह सेवा करते रहेंगे, वही प्रसाद खाएंगे जो भगवान ने खाया है, तो फिर कलयुग हम पर प्रभाव नहीं कर सकेगा। अनुवाद देखिए, जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त धार्मिक अधार्मिक कृत्यों को प्रश्रय देने वाला कली इस संसार में आ गया। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान तथा उनके नाम यश गुण सभी अभिन्न है। भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। इसी प्रकार यदि भगवान के पवित्र नाम गुणों आदि के सतत कीर्तन का प्रबंध हो तो कली के प्रवेश के लिए अवसर नहीं मिल पाएगा। अगर आज हम चाहते हैं कि कलयुग हम पर आक्रमण न करे, हमारे जीवन में प्रवेश न करे, तो फिर हमें अपने जीवन में भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की कथाओं के कीर्तन का सदैव सतत प्रबंध, कुछ ऐसा तरीका हो कंटिन्यूस भगवान की कथाओं को श्रवण करने का अवसर मिले, भगवान के पवित्र नाम को जप करने का अवसर मिले, भक्तों की संगति का अवसर मिले, कीर्तन का अवसर मिले, तो कलयुग कभी भी हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकेगा। संसार के कली को भगाने का भगवाने की यही उक्ति है। आधुनिक मानव समाज में भौतिक विज्ञान के कारण बड़े बड़े विकास हुए हैं। लोगों ने वायु में ध्वनि विस्तार के लिए रेडियो ईजाद किया है, अतएव इंद्रिय भोग के लिए किसी बद्धे स्वर को प्रसारित न करके यदि राज्य भगवान के पवित्र नाम यश तथा उनके गुणों की दिव्य वाणी को जिस तरह से वे भगवत गीता या भागवतम में प्राप्त है प्रसारित करने की व्यवस्था करें तो उचित वातावरण उत्पन्न होगा, संसार में धर्म की पुनः स्थापना होगी, और इस प्रकार प्रशासक लोग जो संसार से भ्रष्टाचार को के अनुमूलन को लेकर इतने उत्सुक हैं विजयी होंगे। श्री रूपा जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि आजकल बहुत नई नई इन्वेंशंस होती हैं, रेडियो जो है वो हर जगह पर जो है ना वायु ध्वनि से हम तक समाचार सेंड करता है, उसी तरह मीडिया इतनी ज्यादा मतलब हर जगह पर फैली हुई है, हर चीज हमें कैसे पता चलती है। तो कभी बहुत सारे ऐसे फिल्में लगाते हैं बद्धे, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बोला है कि अतएव इंद्रिय भोग के लिए बद्धे स्वर को प्रसारित ना करके, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इन सब आविष्कारों का यूज किस में हो रहा है, सिर्फ काम वासना को बढ़ाने के लिए। आजकल जो न्यू जनरेशन है उसके अंदर इंद्रिय भोग की वासना किस प्रकार से बढ़े, बस वही चीजें दिखाई जाती हैं इसमें। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इंद्रिय भोग के किसी बद्धे स्वर को प्रसारित ना करके यदि राज्य भगवान के पवित्र नाम यश तथा उनके गुणों की दिव्य वाणी को, जो भगवत गीता और भागवतम महापुराण को प्रसारित करेंगे, तो फिर उचित वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। ये इंद्रिय भोग हर जगह जो दिख रहा है, ये मीडिया में यदि केवल भगवान के विषय में बताया जाए, भगवान की महिमा के विषय में, भगवान के नाम के विषय में यदि यही चीज सुनने को सबको मिलेगी, तो फिर क्या होगा, जो आज के जो नेता हैं, जो भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, वो विजयी होंगे। श्रील प्रभुपाद जी अंत में बहुत ही सुंदर लाइन कहते हुए इस तात्पर्य को समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी भी कोई भी वस्तु बुरी नहीं होती है, जो कुछ भी है उसमें कोई ना कोई गुण है, यदि उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाए। हर एक वस्तु जो है वो आपके लिए प्रसाद बन सकती है, अगर आप उसको भगवान को अर्पित करो। तो जो कुछ भी है हमारे जीवन में, जो भी सुख है, सुविधा है, धन है, यश है, मान है, जो कुछ हमारा ज्ञान है, बुद्धि है, हर एक वस्तु जो है हमें भगवान की समर्पित, भगवान के भगवान को अर्पित कर देनी चाहिए, फिर वो हमारे लिए अवश्य आनंददायक बन जाएगी। इसी भगवान श्री कृष्ण कहते भगवत गीता में, यत् करोषि यदश्नासि यज्ञ होषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पण, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो, जो तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करो। हमारे पास जो कुछ भी है यदि हम वो भगवान को समर्पित करके फिर उसको अपने जीवन में उपयोग में लाएंगे, तो वो अवश्य हमारे लिए लाभदायक बनेगा। उसी से हमारे जीवन की परम सिद्धि हमें प्राप्त होगी, उसी से अंत समय में हमें भगवान स्मरण होंगे। इसलिए हमें सदैव भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहना चाहिए, भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहना चाहिए, और आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे लिए प्रार्थना अवश्य करना, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को सही तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।